अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गौर प्रेम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 भगवद्गीता एज इट इज चैप्टर 2 कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड टेक्स्ट 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। ट्रांसलेशन प्रिपेयर्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। Never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. Purport. There are three considerations here: prescribed duties, capricious work, and inaction. Prescribed duties are activities enjoined in terms of one's acquired modes of material nature. Capricious work means actions without the sanction of authority, and inaction means not performing one's prescribed duties. The Lord advised that Arjuna not be inactive, but that he perform his prescribed duty without being attached to the result. One who is attached to the result of his work is also the cause of the action. Thus he is the enjoyer or sufferer of the result of such actions. As far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into three subdivisions, namely routine work, emergency work, and desired activities. Routine work performed as an obligation in terms of the spiritual injunctions without desire for results is action in the mode of goodness. Work with results become the cause of bondage, therefore such work is not auspicious. Everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. Arjuna was therefore advised by the Lord to fight as a matter of duty without attachment to the result. His non-participation in the battle is another side of attachment. Such attachment never leads one to the path of salvation. Any attachment, positive or negative, is cause for bondage. Inaction is sinful. Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjuna. Om Jnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurandhitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauri Kabinda. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
कुछ श्लोक पहले भगवान बताए कि जो लोग वेदों के सार को नहीं समझते हुए केवल वेदों में जो कर्मकांड भाग है उसी कोई परम संदेश वेदों का समझ लेते हैं, यानी कि शास्त्रों में दिए गए जो सब हमारे नियत कर्म हैं उसे करना है फल की आकांक्षा से, जिससे कि हम इस भौतिक जगत में खूब आनंद भौतिक सुख प्राप्त कर सकें, वो कर्मकांडी विचारधारा है। तो हमने सुना कि वो लोग कैसे कभी भी वो हमेशा कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। अभी इसके विपरीत भगवान बता रहे हैं वो मार्ग, वो कर्म करने का तरीका जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं बनते हैं। मुख्य रूप से कर्म करने के पीछे जो हमारी चेतना है, वो डिसाइड करेगी कि जो हमारे कर्म हैं उसका परिणाम हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधेगा या नहीं बांधेगा। एक्टिविटीज एक सी रहेंगी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी हैं शास्त्रों में दी गई वो एक सी रहेंगी, लेकिन किस चेतना से वो एक्टिविटीज की जाएंगी उस पर निर्भर होगा कि उन एक्टिविटीज का परिणाम मुक्ति की तरफ ले जाने वाला होगा या और अधिक बंधन में डालने वाला होगा। अर्जुन के लिए उसका नियत कर्म क्या है? युद्ध करना, क्षत्रिय है युद्ध करना, वो तो कॉमन है। अभी वही अर्जुन यदि युद्ध करे कि मैं युद्ध करूंगा और फिर मुझे अपना राज्य मिल जाएगा और फिर मैं उस राज्य को भोग करूंगा, आई विल बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, अगर इस चेतना से अर्जुन युद्ध करता है तो वो कर्म बंधन में बंधेगा, क्योंकि उस नियत कर्म को करने के पीछे उसकी उसके फल को भोगने की इच्छा है। या वो इस उद्देश्य से करे कि मैं युद्ध करूंगा, अगर जीत गया तो राज्य का भोग करूंगा और मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त करूंगा, क्योंकि ये धर्म का नियम है कि जो भी जिस प्रकार से अपने नियत कर्म करता है और उस कर्म को करते हुए यदि वो मर जाता है, शहीद हो जाता है, जैसे क्षत्रिय युद्ध में धर्म युद्ध में मारे जाते हैं, तो हमने पढ़ा कि वो स्वर्ग उनको प्राप्त होता है, जैसे कि जानवर को जो यज्ञ में बलि दी जाती है तो उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है, तो उसी प्रकार से जो क्षत्रिय युद्ध में मारे जाते हैं धर्म के धर्म का पालन करते हुए तो वो लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो यदि अर्जुन युद्ध करेगा इस सोच से तो भी वो कर्म बंधन में बंधेगा, क्योंकि या तो स्वर्ग जाएगा तो उस भौतिक जगत में ही भोग करेगा, तो दोनों ही स्थिति में उसका कर्म बंधन चलता रहेगा, उसको शरीर प्राप्त करने होंगे बार 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 बार। स्वर्ग में भी शरीर मिलेगा, स्वर्ग में जाने पर उस प्रकार का शरीर मिलेगा, लेकिन शरीर बंधन तो रहेगा ना, और शरीर बंधन मतलब जेल आत्मा के लिए, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो हर जगह रहेगी। और अगर अर्जुन विचार करे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि युद्ध करने में बहुत मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे अपने स्वजनों को मारना पड़ रहा है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसकी गति क्या होगी? क्या कर्म बंधन होगा या मुक्ति होगी?
कर्म
बंधन होगा। क्यों?
धर्म का पालन नहीं कर रहा, जितना उसकी कि वो भोगी है कि वो अगर युद्ध करेगा तो मारा जाएगा या ऐसा कुछ होगा या उसको कष्ट होगा, वो तो उसकी चेतना ये है कि अगर कष्ट हुआ इसका मतलब वो नहीं है तो उसको और डिजायर खुशी मिली है।
वेरी गुड। अगर वो नहीं युद्ध करता तो उसके पीछे उसकी एक सेंस क्रिएटिव कंडीशन है कि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे ये सब मतलब वो जो रिलेशन जो होता है जो शरीर में एक जो रिलेशन होता है हमारा टेम्परेरी वो उसको ज्यादा महत्व दे रहा है जो उसका धर्म है उसके तो इससे वो एक तरह का सेंस क्रिएटिव कंडीशन कर रहा है।
तो कुरान ने जो उत्तर दिया कि उसको कर्म बंधन रहेगा क्योंकि उसने धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन इसके पहले जो ऑप्शन हमने दिया कि अर्जुन यदि युद्ध करेगा धर्म का पालन करेगा इस चेतना से कि मुझे उससे स्वर्ग मिलेगा तो भी तो उसे कर्म बंधन बनेगा, तो केवल धर्म को करने से हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते, वो धर्म जो हम कर रहे हैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं किस चेतना से कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा कि हम मुक्त होंगे कि नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप ये पॉइंट? अगर हम अपने कर्तव्य का धर्म का पालन कर रहे हैं इसी भौतिक जगत में आसक्त तो होते हुए इसी भौतिक जगत में हमें और भोग करने को मिलेगा इस उद्देश्य से, तो वो धर्म का पालन करने पर भी हमें बंधन ही होगा, लेकिन कैसा बंधन होगा? स्वर्ग का बंधन होगा। और अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो कौन सा बंधन होगा? नरक का बंधन होगा। पर बंधन तो होगा ही, सोने की जंजीर के लोहे की जंजीर, बस ये फर्क पड़ेगा, लेकिन बंधन तो होगा ही, ठीक है। लेकिन हाँ, तो ये जो पॉइंट है कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करेगा, क्या उसका चेतना है? कि मेरे स्वजन मारे जाएंगे, तो केंद्र तो यहां भी इंद्रिय भोगी हो ना, ये जो त्याग है उसका केंद्र तो वही है इंद्रिय भोग, जो चीज मेरे इंद्रिय भोग के लिए अच्छी है वो मैं करूंगा, और जो इंद्रिय भोग में रुकावट है वो नहीं करूंगा। तो केंद्र तो वही रहा ना मेरा इंद्रिय भोग, एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। तो सिक्का क्या है? इंद्रिय भोग। एक तरफ है वो करूंगा जिससे मुझे इंद्रिय भोग मिलेगा, और वो नहीं करूंगा जिससे मुझे इंद्रिय भोग नहीं मिलेगा, जो रुकावट होगी मेरे लिए। बात तो वही है, सेंटर पॉइंट तो वही रहा ना, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। तो संसार में सब लोग इसी प्रकार से तो निर्णय करते हैं, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये अच्छा है, अच्छा मतलब क्या है? मेरे इंद्रिय भोग के लिए अच्छा है। ये बुरा है, बुरा मतलब क्या है? मेरे इंद्रिय भोग के लिए बुरा है। तो ऐसी चेतना से जब हम अपना कर्तव्य करते हैं तो उससे कर्म बंधन बनता है। तो इसलिए भगवद गीता में कर्म योग जो एसेंस है वो ये है, आर्ट ऑफ एक्टिव, कर्म करने की कला, जो पूरी भगवद गीता भगवान सिखाई है कि हमें इस भौतिक जगत में कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, शरीर पालन करना ही होगा, समाज है, समाज का चलाना ही होगा, चलना ही होगा। लेकिन उस कर्म को, उस धर्म को, उस कर्तव्य को, उससे जो मिलने वाले फल है उसको भोगने के उद्देश्य से नहीं करना है, केवल इस शरीर और समाज को हष्ट-पुष्ट चलता रहे जिससे कि ये शरीर और समाज भगवान की सेवा में नियोजित होता रहे, इस उद्देश्य से धर्म पालन करना है। इसको निस्वार्थ भाव से धर्म पालन करना चाहिए। ऐसा करने से कर्म बंधन नहीं लगता है, ऐसे कर्म का कोई फल नहीं बनता है जिसमें कि उसके फलों को भोगने की इच्छा नहीं है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बहुत लोग जानते हैं श्लोक को। लेकिन जनरली क्या इसका अर्थ सोचते हैं, केवल एग्जाम कोई के लिए तैयारी कर रहा है तो कई बार बोलेंगे देखो बस तुम खूब मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। तो उनका जनरली क्या आशय होता है चिंता करने का, कि अभी मत सोचो उसके बारे में, अभी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो,
कंप्लीट हो जाए उसके बाद सोच सकते हो,
कंप्लीट हो जाए जब फल मिल जाए तो उसको भोग कर लेना। क्योंकि भोग करने के उद्देश्य से तो पूरा एग्जाम कर रहे हैं, नहीं तो एग्जाम का मोटिवेशन ही क्या है? और Isn't? तो पूरा जो एग्जाम देने के पीछे मोटिवेशन ही है कि इसको इसके बाद मुझे ये मिलेगा, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। तो वो तो कर्मण्येवाधि का रास्ता श्लोक का पालन हुआ ही नहीं फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि उसका तो कर्म करने के पीछे उद्देश्य ही उसके फलों को भोग करना है। तो केवल ये इतना सुपरफिशियल नहीं है श्लोक का मतलब कि बस पढ़ाई करते समय सोचो मत उसके बारे में, क्योंकि उससे पढ़ाई का डिस्टर्बेंस होगा, जस्ट कीप ऑन वर्किंग, उसका ये इतना सुपरफिशियल मीनिंग नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। भगवद गीता इज वेरी डीप, इट्स नॉट जस्ट द मेंटल एडजस्टमेंट, इट इज द चेंज ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, इट्स नॉट जस्ट सम मेंटल एडजस्टमेंट। तो ये कर्मण्येवाधि का रास्ता मतलब ये बहुत ही गहरा इसका अर्थ है कि आप नियत कर्म करने के अधिकारी हो, उससे मिलने वाला जो फल है उसके अधिकारी आप नहीं हैं उसको भोग करने। अगर कोई बिजनेसमैन खूब मेहनत कर रहा है और करोड़ रुपए कमा रहा है तो भगवत गीता के अनुसार वो करोड़ रुपए एंजॉय करने का अधिकारी वो नहीं है। ये इसका अर्थ है। तो सामान्यतः तो लोग बोलेंगे अरे ये कैसे, क्या मतलब है इसका, मेहनत हम कर रहे हैं फिर फल जो मिलेगा उसको हमको नहीं भोगना है, तो ये मेहनत क्यों करेगा कोई आदमी? This question will come immediately. अगर बिजनेसमैन को आप बोलो आपको करोड़ रुपए कमाना है और वो जो करोड़ रुपए आपको वो खुद एंजॉय नहीं कर रहा है तो कहां से उसको फिर मोटिवेशन आएगा बिजनेस करने का, काम करने का? सामान्य लोग तो इसीलिए बिजनेस करते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं, इसलिए कुछ भी काम करते हैं कि उसके फलों को उनको भोगना है। लेकिन ये श्लोक क्या कह रहा है? नो, वो आपका अधिकार नहीं। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि ये शरीर जिससे हम मेहनत करते हैं ये क्या हमारी संपत्ति है? ये शरीर तो प्रकृति के द्वारा हमको दिया गया है, तो हमारा नहीं है, गिफ्टेड है। इट इज नॉट अवर्स, इट इज गिफ्टेड, इट बिलोंग्स टू समबडी एल्स, इट बिलोंग्स टू कृष्णा। जो रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, माने कोई बिजनेसमैन है, कोई एक चीज उसने उत्पादन, कोई लोहा है या कॉपर है या जो भी है, उससे उसने कोई मटेरियल बनाया, फिर उसको बेचा, फिर उससे कुछ कमाया, तो जो रॉ मटेरियल है जिसने उसको जिस पर उसने वर्क किया, वो क्या उसकी संपत्ति थी? वो भी उसकी संपत्ति नहीं थी, करेक्ट। तो उसका बहुत थोड़ा सा योगदान था उस पूरे फल को प्राप्त करने के पीछे। He was not the only contributor to get that result. तो कोई भी कार्य के पीछे पांच कारक होते हैं, 5 factors, जिससे वो कार्य होता है और जिससे वो फिर फल मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मेरी वजह से सब कुछ, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, आई एम, मेरे ही सब कर, मेरी वजह से हो रहा है, इससे जो भी फल है मैं उसका अधिकारी नहीं हूं, तो वो अज्ञानता है, इसलिए उससे कर्म बंधन लगता है। जो सोचता है कि मैं करता हूं, यानी आई एम द सोल कॉज ऑफ एक्शन, मैं ही, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, देयर इज नोबडी एल्स, देयरफॉर आई एम द सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस फ्रूट, मैं इस पूरे जो भी फल है उसको, उसका आस्वादन करने का अधिकार मेरा ही है। जो ऐसा सोचता है तो उसको बताया भगवद गीता में, प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढः आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के द्वारा शरीर दिया गया वो भूल गए, भगवान ने आपको हृदय परमात्मा में जो विराजमान है उन्होंने आपको सारी याददाश्त दी, मत्तः स्मृतिर् ज्ञानं बोधनं च, वो भूल गए और सोच रहे हो कि बस मैं ही इसका अधिकारी। तो इसकी वजह से जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं, मेरी वजह से सब हुआ है और कोई नहीं है, प्रकृति कुछ नहीं है, भगवान कोई नहीं, सब मेरे कंट्रोल में, आई डिड इट, देयर इज नो अदर फैक्टर इन्वॉल्व, देयर इज नोबडी एल्स इन्वॉल्व, आई एम द सोल डूअर, करता हम, इसको बोलते हैं अहंकार। अहंकार बोलते हैं अहंकार आ गया, बहुत अहंकार मतलब अहम करता भाव, उसको बोलते हैं अहंकार, मैं ही एकमात्र करता हूं, सब मेरी वजह से हो रहा है, जो मैं कर रहा हूं मेरी वजह से हो रहा है, आई एम द सोल कॉज, उसको बोलते हैं अहंकार। इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है तुम सोच रहे हो तुम करता हो तो फिर उसके परिणाम तो तुम ही भुगतो, सब कुछ भुगतो तुम, तो फल तुम खा रहे हो लेकिन उसके और बहुत सारे फल भी बन रहे हैं, शरीर बन रहा है वो भी तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए शरीर बंधन है क्योंकि वो अपने को भोक्ता मान रहा है, तो फिर प्रकृति का ठीक है तो भोग करो, तुम करता अपने को सोच रहे हो, तुम भोग करना चाहते भोग करो, तो भोग करने के लिए फिर शरीर चाहिए, शरीर बंधन आता है इसलिए। तो इसलिए वो जो इस चेतना से किया आता है, अहंकार की भावना से जो कार्य किया आता है कि मैं ही करता हूं और इसलिए मैं ही भोगता हूं, उस चेतना में जो कार्य किया जाता है उससे फिर हमें फल को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि हमने इस चेतना से वो किया है, हम विवश होते हैं प्रकृति के द्वारा फिर वो चीज को भुगतने के लिए, परिणाम को जो भी हो, खट्टा मीठा जो भी। अब आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैंने ये कार्य किया इसका जो है मीठा फल बस मुझे चाहिए, कड़वा फल मुझे नहीं चाहिए, ऐसे आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आप कार चला रहे हैं तो कार चलाने में एक एंजॉयमेंट है, यस आई एम मूविंग वेरी फास्ट, लेकिन पंचर होगा, एक्सीडेंट होगा, वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। आप ऐसे आप जाएं कंपनी वाले के पास, मैंने कार आपसे मांगी थी जिसमें मैं तेज गति से जा सकूं, मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैंने इसे तो कार नहीं मांगी थी, दैट्स कम अलॉन्ग विद द कार, यू कैन नॉट अवॉइड इट, वन पैकेज। तो उसी प्रकार से जो भी आप कार्य करोगे उसके सारे के सारे फल फिर आपको भुगतने पड़ेंगे अगर आप उसको भोगने के उद्देश्य से कर रहे हो। लेकिन भगवान का ये आयोजन है कि यदि कोई व्यक्ति अज्ञानता से बाहर निकल करके ज्ञान में स्थित हो जाता है और उस ज्ञान में स्थित होकर के जब कर्म करता है समझते हुए कि मैं एकमात्र कर्ता नहीं हूं और वास्तव में मौलिक रूप में आत्मा के रूप में तो मैं भोगता हूं ही नहीं, तो मैं ये शरीर या जो भी मैं कार्य कर रहा हूं वो भगवान की संतुष्टि के लिए करूं जिससे मैं अंततः भगवत धाम जा सकूं, भगवान का सेवक बन सकूं, ऐसी चेतना से जो व्यक्ति अपने सब नियत कर्तव्य करता है वो नियत कर्तव्य का फल उसको बांधता नहीं है, ये भगवान का कृपा से ऐसा होता है क्योंकि वो ज्ञान में स्थित कर रहा है कि आई एम नॉट, ये इसका फल का भोगता मैं हूं नहीं, आई डोंट नीड दिस फ्रूट्स, शरीर है भगवान की संपत्ति है, शरीर को टिकाने के लिए मैं भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करो। जैसे एक उदाहरण लें तो कोई सैनिक है, वो अपने कमांडर के ऑर्डर पर बंदूक चलाता है, गोली चलाता है और दुश्मनों को मारता है, तो उसको क्या मारने का अपराध रहेगा, हत्या का अपराध रहेगा, उसको फांसी होगी, उसको नहीं, पुरस्कार मिलेगा। और वही सैनिक छुट्टी में घर में आए और पड़ोसी से लड़ाई हो गई और पड़ोसी को उसी बंदूक से मार दे, तो फिर क्या होगा, जेल हो जाएगी, फांसी से जहां हो सकती है। अब बोले भाई यही बंदूक से मैंने उस दिन 10 लोगों को मारा, मुझे तुमने पुरस्कार दिया, आज तो एक ही को मारा, तो फिर मुझे जेल में क्यों डाल रहे हो। अंतर क्या हो गया, वहां पर उसने केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए गोली चलाई, मेरा कर्तव्य है, मेरे सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर पे उसने गोली चलाई, अपने ऑन बिहाफ नहीं चलाई, इट वॉज जस्ट टू फुलफिल द ऑर्डर ऑफ द हायर अथॉरिटी। इसलिए उसका अच्छा या बुरा वो सब उसको नहीं मिलेगा, वो जो भी है वो कमांडर को देखना है। लेकिन अपने इंडिपेंडेंटली थॉट करके, अपना विचार करके, अपने इंद्रिय भोग के लिए आपने गोली चलाई कि ये मेरा दुश्मन है, मेरे को इसने परेशान करता है, इसको मार दिया, तो आपको कानून के अनुसार आपको सजा मिलेगी। तो उसी प्रकार से यदि हमें समझ लें कि हम तो भगवान के हाथ में एक निमित्त है, वी आर इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ गॉड, दैट्स ऑल, तो फिर इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा कुछ सजा मिलती है, इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, है ना। कोई चक्कू से कोई किसी को मारता है तो सब समझते हैं चक्कू तो एक इंस्ट्रूमेंट है, चक्कू की थोड़ा कोई गलती है, इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो उसी प्रकार से यदि हम इस भौतिक जगत में या कभी भी हमेशा के लिए यदि हम भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन जाएं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साक्षी, तो फिर हमें फिर और कोई कर्म बंधन नहीं लगता है, अब तो हम इंस्ट्रूमेंट बन गए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की जगह हम अपने बलबूते पर अपने इंद्रिय भोग के लिए कुछ कार्य करेंगे, अच्छा या बुरा, तो उसके अनुसार फिर हमको परिणाम होगा। तो ये इस श्लोक में बताया है कि हमें सभी को अपना नियत कर्म करना है, जो भी हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, वर्ण, हमारा वर्ण कौन सा है उसको समझते हुए, हमारा आश्रम कौन सा है उसको जानते हुए, शास्त्रों में सबके लिए क्या क्या करना है, किसको खेती करनी है, किसको शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना है, किसको क्षत्रिय की तरह से धर्म का पालन करवाना है, और किसको शूद्र की तरह से सबकी सेवा करनी है, सबके स्वभाव के अनुसार ये निश्चित है। और फिर उसके अंदर आश्रम जो है, कोई ब्रह्मचर्य है तो उसको क्या करना है, गुरु के कुल में जाकर गुरु की सेवा करते हुए शास्त्र अध्ययन करना है, कोई गृहस्थ है तो उसको जो भी उसके वर्ण के कार्य हैं क्षत्रिय ब्राह्मण वो कार्य करने हैं, और गृहस्थ आश्रम के और बहुत सारे कर्तव्य हैं, दान देना है, ये सब करना है। वानप्रस्थ है तो फिर से उसको तपस्या का जीवन जीना है, भगवान का सेवा करते हुए, स्मरण करते हुए, और सन्यासी है तो उसको केवल प्रचार करना है। ऐसे शास्त्रों में सबके लिए जो जो हमारी जीवन की स्थिति है उसके अनुसार और जो जो हमारा वर्ण है उसके अनुसार नियत कर्म बताए हैं, उसके अनुसार हमें कार्य करना है। किस लिए, कि ये कर्तव्य पालन करने से, इनके फलों को भगवान को अर्पित करने से हमारी धीरे धीरे शुद्धि होगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी, इस उद्देश्य से। और साथ साथ में हरे कृष्ण कीर्तन नविदा भक्ति करनी है जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तो फिर कर्म बंधन नहीं लगेगा, आध्यात्मिक प्रगति होगी और अंत में कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। दैट्स ऑल, दैट इज इन एसेंस स्पिरिचुअल लाइफ, बट वी नीड टू हियर इट अगेन एंड अगेन। बाबा बाबा ही सुनना पड़े, कंटेम्पलेट करना, एकदम से ना तो समय में आता है एकदम से, ना समय में आने के बाद भी हमारे उसको करने की शक्ति क्षमता इच्छा नहीं बनती है, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत जन्मों से तो यही इस जगत में हम भोगता है, एंजॉय करेंगे सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा, यही हम लोग कंटेम्परेट और करते आए हैं, इसलिए यू नीड टू हियर इट अगेन। तो इसलिए भगवदगीता में बार 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 इस विषय को अलग अलग एंगल से, अलग अलग गहराइयों से, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से समझाया जाएगा। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? यस।
अगर ऐसे कोई व्यक्ति सोचता हो उसकी इसकी पीछे चेतना ये रहती है कि ऐसे आदमी रहता ना कि वो ये चाहता हूँ कि पूरा डिपेंड मेरे ऊपर है, ऐसे मैं भक्ति नहीं करूँगा, मतलब मेरे जो मेरे कर्म होंगे उसी पे मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो उसकी जितना ये भी तो हो सकती है कि मेरे जो कर्म हो रहे हैं और जिसके आगे फल मिलने वाला है तो वो मेरे कर्म से हो रहा है और जो मैं करूँगा उसी से आगे मिलेगा, तो वो ये सोचता हूँ कि मुझे और कुछ करने की मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगी ना, तो सोचता मैं जो पहले कर्म करूँगा उसी से आगे फल मिलेगा, तो मैं अभी जो कर रहा हूँ वो भी आगे डिसाइड होगा, सब कुछ मेरी वजह से तो हो रहा है, तो वो इसकी भी चेतना है,
तो वो भी वही चेतना है जिससे कर्म बंधन रहेगा, वो यही सोच रहा है कि
अहंकार का सोच रहा है वो, कोई अहंकार से नहीं सोच रहा है, सिंपल सोच रहा है कि अगर मैं अभी जो कर रहा हूँ आगे मेरे कर्म आगे डिसाइड होगा, जो मैंने पहले किया वो मैं अभी हूँ।
हाँ, लेकिन वो जब कर्म डिसाइड करेंगे तो उसमें प्रकृति ने मुझे सहायता की ना, भगवान ने मुझे सहायता की ना, ये सारा कर्म का सिद्धांत तो उन्होंने बनाया, प्रकृति के द्वारा मुझे शरीर तो उन्होंने दिया, बुद्धि उन्होंने दी जिसके माध्यम से मैं कर्म कर पा रहा हूँ, तो ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ तो जो उसके फल मिल रहे हैं उसका मैं भोक्ता कैसे हुआ। मान लीजिए कोई कारपेंटर है, आपने कारपेंटर को एम्प्लॉय किया कि ये लो लकड़ी एक टेबल बना के दे दो, तो अभी कारपेंटर ने वर्क किया उसके ऊपर, मेहनत की खूब, और फिर जब टेबल बन गई तो अपने घर उठा के ले गए, बोले क्यों भाई, मैंने इसमें मेहनत की टेबल बन गई मैं घर ले गया, तो क्या प्रॉब्लम थी, लकड़ी तो उसकी नहीं थी, ठीक है, ही जस्ट वर्क्ड ऑन इट बट ही वाज, लकड़ी तो किसी और ने प्रोवाइड की, तो वो उसका एंजॉयर कैसे हो गया, सोल एंजॉयर उस लकड़ी का, ठीक है, ये उसकी मिस्टेक हो गई। अगर वो टेबल को अपने घर उठा के ले जाए तो ही विल बी कंसिडर्ड एज ए क्रिमिनल, करेक्ट। तो उसी प्रकार से ये समझना कि हम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं ये तो समझ होनी चाहिए, पर ये समझना कि कर्म के फल का अधिकारी मैं हूं क्योंकि मैं ही तो कर्म कर रहा हूं, नहीं, ये कर्म मैं क्यों कर पा रहा हूं क्योंकि भगवान ने मुझे इस प्रकार का शरीर दिया है, ये पूरा आयोजन बनाया है तीनों गुणों का, उससे तो मैं कर्म कर पा रहा हूं, तो फिर जो भी परिणाम मिल रहा है उसका भोक्ता मैं कहां हुआ, भगवान में, इसलिए उनको अर्पित करूंगा, समझ रहे हैं, जैसे कहां से Any other question?
जैसे प्रभु जी कोई पर्सन ऐसा होता है कि जिसके जो कोई कर्म कर रहा है उसके पीछे उसकी कोई डिजायर नहीं होती, लेकिन वो फिर भी पता नहीं उसको भी नॉलेज नहीं फिर भी वो करता जाता है, उसकी कोई डिजायर नहीं है कि मेरे को ये आगे आगे इससे ये पाना है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी वो करता जाता है, तो उसके पीछे उसको ना कुछ गौर का कंसेप्ट भी नहीं पता कि मैं ये क्यों, बस वो कर उस चीज को कर रहा है, उसको ऐसा भी नहीं कि मेरे को उससे कुछ आगे आगे मिलेगा या कुछ पाना है, उस केस में ये कि मतलब क्या हो रहा है,
उसको गधा कहते हैं डोंकी।
तो
डोंकी जो है वो बहुत भारी कपड़े वजन सब लेके ढोता है पर किस लिए कर रहा है उसको ये नहीं पता है।
तो
क्योंकि वो मूर्ख है, अज्ञानता में है, घोर अज्ञानता में है, बस करे आ रहा है कि अंदेज ना दिखे, सो देयरफॉर ही आल्सो कर्म बंधन ही होगा उसका। और वास्तव में वो जो आदमी कुछ विचार नहीं करता है कि मैं किससे कर रहा हूं, भले उसके कॉन्शियस माइंड में नहीं हो कि मुझे कुछ ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो रजोगुण से आता है वो डिजायर, आई वॉन्ट टू बिकम द रिचेस्ट मैन, ठीक है, लेकिन तमोगुणी आदमी क्या है, वो आलसी है, उसे बस वो तो उसे वही आनंद लगता है, उसे कुछ विचार है बस चलती रहती गाड़ी ऐसे आसमें, उसको ही एंजॉय दैट टाइप ऑफ लिविंग, ठीक है, सो वो भी एक एंजॉयमेंट है तमोगुण के अंदर, ऐसा नहीं कि इज सेंट, दिखने में दोनों ही जैसे लगेंगे, एक साधु और एक तमोगुणी व्यक्ति दिखने में जैसे लगेगा, है ना, उसकी भी कोई बहुत बड़ी आशाएं नहीं है, और साधु की कोई आशा नहीं है, लेकिन साधु बहुत एक्टिव होगा आध्यात्मिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में निश्चेष्ट होगा। तो दूसरे देखने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं आपको, लेकिन उनकी चेतना में धरती आसमान का अंतर। क्लियर? एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।